ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश में होने वाली आपराधिक घटनाओं का पूर्वानुमान और जांच कर ऐसी घटनाएं होने न देने के लिए पुलिस को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। सुदूर पश्चिम प्रदेश का मुख्य त्यौहार गौरा पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार आज मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ। ओमान की विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद दो दिवसीय नेपाल दौरे पर काठमांडू में और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद हवलदारों ने 22 लोगों की गोली मारकर कर दी हत्या। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपराधिक घटनाओं की आशंका और जांच करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता से काम करने का नेपाल पुलिस को निर्देश किया है। आज काठमांडू महानगर पालिका 11 भद्रकाली स्थित नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने अस्थिरता और अराजकता पैदा करने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहने और लोगों को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के मामले में दृढ़ता के साथ काम करने का नेपाल पुलिस को निर्देश किया। ये उल्लेख करते हुए कि वर्तमान सरकार का गठन देश और लोगों के लिए कुछ करने की भावना के साथ किया गया है, प्रधानमंत्री ओली ने संविधान और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उन्नत ज्ञान का उपयोग करके लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। गृहमंत्री रमेश लेखक ने नेपाल पुलिस को लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। इसी तरह देश के आर्थिक, राजनीतिक और विकास के लिए दो बड़ी पार्टियों को एक साथ आना होगा, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि पड़ोसी देशों के बीच समस्याएं आम हैं और इन्हें खुली बातचीत से सुलझाया जा सकता है। आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और परराष्ट्र मंत्री कमल थापा द्वारा लिखित पुस्तक डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिक्स का विमोचन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा है कि यदि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष राष्ट्रीय हितों के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए तथ्यों और सबूतों के आधार पर समाधान खोजा जाए तो समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। नेपाल और भारत के बीच शीर्ष स्तरीय समझौते से सन 1950 की संधि और अन्य मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित प्रबुद्ध लोगों के समूह का प्रतिवेदन ग्रहण करने का भारतीय पक्ष से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा विवाद लगात अन्य मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाल में कई सांस्कृतिक और मूल परंपराओं का विकास और वैश्वीकरण किया जाना चाहिए। गौरा पर्व के अवसर पर आज टूरी खेल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल में उपलब्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता को निर्माण के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी उल्लेख किया कि सुदूर पश्चिम क्षेत्र नेपाल की सभ्यता का जन्मस्थान है और वहां की परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गौरा पर्व को सुदूर पश्चिम और कर्णाली का मूल चंद्रमा बताते हुए नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि ये एकता और भाईचारे का संदेश देता है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि गौरा पर्व आत्म अनुशासन, मर्यादा, सद्भाव और आत्मीयता का संदेश देता है जिसे व्यवहार में लागू करने की जरूरत है। इसी तरह वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी ने सुदूर पश्चिम क्षेत्र में गौरा पर्व को बड़े सम्मान और आत्मीयता के साथ मनाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पर्व राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के लिए भूमिका निभाएगा। हर वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से अष्टमी तक सुदूर पश्चिम क्षेत्र में ये त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है जिसमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा और व्रत किया जाता है। राजधानी में रहने वाले सुदूर पश्चिम के लोगों ने आज टूरीखेल में गौरा पर्व मनाया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन एस्ट्रिक 14-15 #डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। हर साल भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन यानी आज मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वैदिक सनातन धर्मावलंबी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान कृष्ण का उत्सव मनाते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के प्रणेता भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को हुआ था, इसलिए आज के दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है और इस रात्रि को मोहरात्रि कहा जाता है। इस दिन देश भर के कृष्ण मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना, उपदेश, भजन, कीर्तन करते हैं और रात भर जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी मनुष्यों को अन्याय, अत्याचार और राक्षसी प्रवृत्तियों से बचाने के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रूप में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण ने जीवन भर सत्य के लिए खड़े होकर मानव समुदाय को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए मानव अवतार के रूप में धरती पर आए श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से लोगों को श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा दी। श्रीमद् भागवत गीता, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ युद्ध में शामिल पांडवों में से एक अर्जुन को उपदेश देते समय कहा था, एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपनी विचित्र लीलाएं दिखाकर पूतना, कंस, जरासंध और शिशुपाल जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश किया था। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ललितपुर के पाटन स्थित कृष्ण मंदिर में राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हामूल अमूल सैदी नेपाल की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए आज दोपहर काठमांडू पहुंचे हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल ने उनका स्वागत किया। वो परराष्ट्र मंत्री डॉ राजू राणा देववा के निमंत्रण पर भाद्र 10 से 11 गति तक नेपाल दौरे पर रहेंगे। परराष्ट्र मंत्रालय के मुताबिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच नेपाल ओमान संबंधों को मजबूत करने और अन्य विविध मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठकें और चर्चाएं होंगी। चितवन के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए आए मरीजों में से 588 लोगों में डेंगू संक्रमण पाया गया है। संक्रमितों में से 417 चितवन के हैं, वहीं 171 चितवन से बाहर के हैं। ये जानकारी जन स्वास्थ्य कार्यालय चितवन के वेक्टर कंट्रोल निरीक्षक राम केसी ने दी। मकवानपुर में स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख कृष्ण बहादुर मीझार ने बताया कि मकवानपुर में स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या 70 तक पहुंच गई है। स्क्रब टाइफस चूहे के काटने से होने की बात बताते हुए प्रमुख मीझार ने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। इसी तरह मकवानपुर में अब तक 43 डेंगू संक्रमित भी पाए गए हैं। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत रौतहड़ की चंद्र निगाहपुर में टाटा सुमो ने मोटरसाइकिल को टक्कर दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में सुनसरी की धरान उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 15 के 33 वर्षीय तुलसी ओझा और मोरंग की सुंदर हरेचा नगर पालिका 11 के विवस साब कोटा की मौके पर मौत हो गई। ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्र निगाहपुर ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की हत्या हो चुकी है, इनमें से 22 मुसाफिर भी शामिल है। इसके अलावा कलात जिले में 11 लोगों की हत्या हुई है, जिनमें 5 पुलिस वाले शामिल है, जबकि एक अन्य जिले से 6 शवों को बरामद किया गया है। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में बंदूकधारियों ने कम से कम 22 लोगों की हत्या कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक बंदूकधारियों ने लोगों को उनकी गाड़ियों से उतारकर पहचान पता करने के बाद उनकी हत्या कर दी। पिछले 24 घंटे में BLA ने पूरे इलाके में पुलिस थानों, सुरक्षा बलों के शिविरों और कई सरकारी ठिकानों पर हमले किए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में होने वाली आपराधिक घटनाओं का पूर्वानुमान और जांच कर ऐसी घटनाएं होने न देने के लिए पुलिस को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। सुदूर पश्चिम प्रदेश का मुख्य त्यौहार गौरा पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार आज मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद दो दिवसीय नेपाल दौरे पर काठमांडू में और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद हमलावरों ने 22 लोगों की गोली मारकर कर दी हत्या। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।